प्रचेता के बंश उनके पुत्रों में से थे। विदिशा कितनी की बात
प्राचीन बड़े के
तो वाल्मीकि जी उनके पंच में एक माँ चकह दूसरे वाल्मीकि जी का भी आता है जो नारद जी ने उनको इनका राम पढ़ने के लिए बड़ा मन किंतु वाल्मीकि रामायण में श्रीमद भागवत में कभी का ऐसा वर्णन नहीं
जी। बंगला में हम लोगों ने पढ़ा है यवन ऋषि का पुत्र यवन ऋषि का पुत्र दस्यु
रत्न सम्मानित है बंगला वाला सम्मानित नहीं किंतु ऐसा मान लेने में कोई धर्म नहीं है किंतु हम लोगों को इस पर नहीं पढ़ाना चाहिए वो राम नाम की महिमा इसमें पढ़ना चाहिए वो भी बुरा नहीं है तो कभी यह वाल्मीकि रामायण विशेष करना और भी बहुत से रामायण अध्यात्म रामायण भी रामायण ग्रंथ
है कौन रामायण
और सब है किंतु ये दो हैं और श्रीमद् भागवत के आधार पर ही तो कृष्ण के बदले उन्होंने तुलसीदास जी ने राम का चरित्र लिखा क्योंकि सिद्धांत भागवत का कर दिया और वाल्मीकि रामायण का भी कर दिया तो वाल्मीकि जी दोनों चरित्रों को यदि देखी तो कोई धर्म नहीं है तो ये किसके पुत्र किसके
यवन ऋषि के पुत्र
किंतु दूसरा उन्होंने पढ़कर
बदल गए
जो कि अटैच हो गए और फिर नारद जी के पिता से वो मरा मरा पाते हुए कितने हजार वर्षों में वो कृष्ण की कथाओं को जो उसमें वर्णन दशा उनके हृदय में उसके लिए राम समाधि जैसे भागवत समाधि ग्रंथ है जैसे वाल्मीकि जी की ये समाधि ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा इसका वर्णन है क्योंकि वाल्मीकि जी एक दिन कमसा नदी के किनारे स्नान करने गए और उनके साथ में उनके शिष्य भरद्वाज जिनकी तपस्या करी प्रयाग और वाल्मीकि जी के कितने आश्रम है इसका ठीक नहीं नारद जी का भी इतना करोड़ों स्थान है कोई ठीक नहीं चित्रकूट के पास में एक प्रयाग में एक और कहीं मिलता है जहाँ पर किसी टाइम उनके साथ में कोई ठीक नहीं
पंचवटी तो नहीं है
अंत में क्या किया तो उनके बाद में भी आश्रम में रही जाओ कुछ फोन पर पैदा वो पढ़ में गंगा या गोमती के किनारे या
तो
एक समय नारद जी उनसे पहले और नारद जी से वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया गुरुदेव आज ऐसा कौन है ये त्रेता युग की बात मालूम कर आज ऐसा युग में इस समय में कौन है जो महाप्रतापी है जिनमें जितने प्रकार के सद्गुण हैं बल है विद्य है कृपालुता है और सब जितने भी कृतज्ञता है इसमें सारे गुण के प्रति और त्रिगुण में सबसे अधिक सुंदर है ऐसा कौन तो नारद जी उसका संक्षेप में वर्णन करते इसके बाद ही दूसरा अध्याय इसका आरंभ होता है कि एक दिन वाल्मीकि अपने शिष्य को साथ लेकर के शांति समता नदी में स्नान करने के लिए गए पर वहां पर स्नान करते करते उन्होंने देखा कि एक जोड़े प्राण पक्षी
तो
स्नान करते समय उन्होंने देखा पेड़ की डालकर जो देख जोड़ी बहुत पुरुष और स्त्री बैठे थे और अंदर सामने मोहित होकर परस्पर प्रेमा भाव कर रहे हैं और उसी समय में एक काला पहेलिया भयंकर रूप हुआ उनमें से एक को अपने बाणों से भी सतर्क उसी समय में वो गिर करके नीचे लसक हो गया और उसी समय में बाली की ये दृश्य देखा और देखने में भाव आविष्ट होकर के क्रोध में आविष्ट हो गए और उसको अभी चंपा दिया कहा अपने आप उनके मुख से निकल पड़ा मानसा प्रतिष्ठान समगम प्रतिष्ठान जब मिथुना एक अवधि निशा तुम्हें कभी शांति न मिले तूने काम के जोड़ने से एक और मुकाम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के उसके होकर के उन्होंने अजाफा दिया और इस श्लोक बना चार चरण का और इसको इस प्रकार से भी किसी भी स्वर से इसको गाया जा सकता तरह तरह के रागों से रागनियों से इसको गाया जा जब वो अभी संपात दे दिया तो जब थोड़ा सा स्नान करके ऊपर आते हैं तो अपने शिष्य से बोले मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता और विशेष करके संसार में तो होता रहता है तो मुझे क्यों क्यों आया और ये अपने आप मुख से निकल गया बिना प्रयास के ऐसा क्यों हुआ और अब अफसोस करने लगे विशेष करके है ना कि क्रोध नहीं करना चाहिए क्रोध में विवेक शून्य हो जाता है और अलग हो जाता है ऐसा नहीं करता किस उपद्वार ये मुख्य जो विराज निकला ये तो छंद है और इसको कर्ता के राग में भी द्वंद से गाया जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ छोटे दोनों आदमी अपने आश्रम में आए और उसी समय जब आश्रम में आए ब्रह्मा जी मान प्रकट में उनके सामने उनका ही दास या इस लोग में संबंध पितामा आज मेरे मुख से ऐसा क्यों निकला मैं तो इसके लिए मैं मुझे क्रोध नहीं होता आज तो लोग आ रहे थे वचन निकल गए तुम्हें कभी शांति नहीं मिले निकाल दी गए मेरी प्रेरणा से ऐसा निकला जिसमें तुम्हारा कुछ नहीं और ये प्रेरणा भगवान के तरफ से हमारे अंतर से और जिससे ये तुम्हारे छंद विचार से अनुभूत ये छंद हो रहा वो चिंता मत करो अपने इष्ट देव जो राम ने जिसको नारद जी ने तुमको इस मंत्र से दीक्षा दी है उनके चरित्र का इन्हीं छंदों में गान करो इससे संसार का कल्याण हो इसीलिए क्या इतने देर तक बैठे थे हमारे चिंतन से और नारद जी की कृपा से नारद जी ने जो उनको कहा था रामचंद्र जी की जाए उन्होंने ब्रह्मा जी की कृपा से समाधि में देखा, क्या क्या देखा? देवता लोग रावण के अत्याचार से क्षुब्ध होकर भगवान से प्रार्थना की कि रावण का विनाश और हम लोगों की रक्षा की। और उस समय देवताओं के आह्वान से भगवान रामचंद्र जी ने उनको आश्रय दिया, आश्वस्त किया कि मैं शीघ्र ही अवतार लूंगा। अपने पूर्व परिकरों के साथ ये देखा, तत्पश्चात देखा गुरुकुल में महाराज दशरथ और उनकी तीन रानियों के साथ में की बात। बहुत दिनों तक कोई बच्चा नहीं, फिर उन्होंने देखा उत्कृष्ट यज्ञ महाराज महर्षि वशिष्ठ की
देख रहे
के परामर्श से श्रृंगेरी ऋषि के द्वारा उत्कृष्ट यज्ञ कराया और उसमें से अग्निदेव चोरू लेकर प्रकट और इनको दिया कि अपनी रानी में किसी को दी। उन्होंने भी भाग किए तो एक कौशल्या को दिया और एक सुमित्रा को दिया और उन दोनों ने कुछ कुछ अपना भाग दोनों मिला करके और दे दिया। तो दोनों नदियाँ इसलिए उनके दो पुत्र और कौशल्या के राम सुमित्रा के ये देखा समाधि में। इसके बाद में उनके बाल्य जीवन का जो जो लीलाएं थी वो देखा, ये भी देखा कि महाराज दशरथ को दशरथ को जब पुत्र नहीं हुआ अपने दो 307 पटरानियों से पटरानी और रानियां थी जब नहीं हुआ तो ये एक बार कहीं शिकार करते हुए या किस रूप में बाहर निकले पैकर देश में और शाम हो जाने से उनके मित्र से कह गए नरे, किंतु शाम होने से लौट न सके उनके हथियार के। पैकर देश ने अपनी बड़ी बेटी सुंदरी किशोरी उनकी सेवा में लगा दिया, उनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था तू करो। महाराज दशरथ की उम्र कितनी थी कहो, इतने हथियार पर और कहते ही अभी 15-16 सर्वगुण संपन्ना परम सुंदरी थी। उन्होंने महाराज दशरथ के लिए सारी व्यवस्था की अपने हाथ में, खिलाने पिलाने सोने इत्यादि सारी व्यवस्था की। सवेरा जब हुआ तो महाराज दशरथ अयोध्या के लिए चलने लगे तो महाराज कह कह से बोले, एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये कि आपकी लड़की बड़ी सुंदरी और योग्य है, मैं इसे अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। यदि आप उचित समझे तो कन्या का दान उनको कर, उन्हें देने मैं नहीं करता। क्यों नहीं करते? आपकी बहुत सी रानियां हैं, उनके जो लड़के होंगे बड़े वो राज्य का अधिकारी होंगे। मैं इसी शाप पर हुआ कि इसका यदि पुत्र हुआ आपको उसको राज्य अभिषेक करना पड़ेगा। तो हंसने लगे महाराज, ये तो मेरे लिए वरदान है कि 307 रानियां पटरानिया और कितनी नजाने हैं। तो हम आज तक हमको पुत्र हुआ 50,000 वर्ष बीत गए नहीं हुआ, तो यदि इसको पुत्र हुआ तो जरूर यही लाभ सिंहासन इसमें दो आप प्रतिज्ञा कीजिए। गंगा जी प्रतिज्ञा कर हम करते विवाह होकर के आई यहाँ। इसके बाद में उत्कृष्ट यज्ञ हुआ, राम पढ़े, इसके बाद विभरत, इसके बाद जमन, लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा। उस समय में चारों तरफ में वो प्रभाव बनने लगा और फिर वहाँ की देवियाँ हैं, वहाँ जाते हैं, वो भी दर्शन किया है। और इसमें कैकेयी राम को अपने बेटे से अधिक मान और दूसरी जो भी
सुमित्रा
वो भी अपने बेटों से अधिक राम को किसी तरह कैकेयी उनको बहुत मान। इसी बीच में एक और घटना हुई, देवताओं से और पशुओं से युद्ध हुआ, उसमें दस दिशाओं को जीतने वाले थे, जिनका ऐसा रथ है इस पर वो चढ़ करके दसों दिशाओं को विजय करते हैं। देवताओं ने बुलाया, उन्होंने असुरों को परास्त किया, किंतु युद्ध में उनके रथ की धुरी टूट गई और उससे वो पूरी करके नीचे आकर के अपने हाथ से उसको थाम दिया, धुरी को गिरने नहीं दिया। और इसके बाद में उन्होंने जय किया, जय के बाद तुम तो बड़ी वीर हो और हमारी रक्षा की, हमारे इस रण क्षेत्र में सहायता की, इसलिए तुम दो बार मांगो, कोई भी जो चाहो वो दो बार मांगो। उन्होंने कहा आप मेरे पति जिसे आपकी सेवा की है, इसमें बल लेने की कोई जरूरत नहीं, हम तो देना चाहते। अच्छा तो ऐसा कीजिए जो कि मैं अपने समय के अनुसार में दे दूँ, जब भी जरूरत पड़ेगी दे दूंगा, ये आपके पास में आपकी और देखा क्या रामचंद्र जी के ध्यान में बात में रामचंद्र जी और ये सब बचपन में कैसे गुरुकुल में गए और प्रथम परीक्षा में शिक्षा ली, ये भी देखा। इसके बाद में देखा कैसे राम को अधिक प्यार करती है, लेकिन राम उसकी गोदी में बैठकर कुछ बातचीत कर रहे हैं और कैसे अपनी गोदी में बिठा करके प्यार कर रही है। राम ने उनसे कहा कि मैया मैं तुमसे एक चीज चाहता हूँ। वो क्या चाहता हूँ? और मैं दे दूंगी सब कुछ, जो चाहेगा वही दे दूंगी, तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं देवताओं के किसी कार्य के लिए कुछ काम करना चाहता और बिना तुम्हारी कृपा के होगा नहीं। इधर तो महाराज दशरथ से ये दो बार मांगना जो तुम्हारे अभी मंगनी के पड़े हुए हैं, फिर भरत जी का राज्याभिषेक हो उनके बाद और रामचंद्र जी का 14-12 वनवास, ये तुमको हमको देना होगा। चिंता नहीं कर सकती क्या कहे ना, तो ये तो मेरे द्वारा होगा, तो फिर मुझे वरदान कीजिए, अब तो आपको करना पड़ेगा नहीं हमारा सब काम और पृथ्वी में आना हमारा सब देवताओं का कार्य। अंत में बड़े प्रेम से कहा करके उन्होंने कहा कि अच्छा तो मैं जगत में मुख नहीं निकला सकती, तो मेरे लिए इतना तो करो। मित्र बड़ों की बात की, रामचंद्र जी के ये दो निवेदन की बात की, कैसे ही भूल गए, राम जी भूल गए, दशरथ जी भूल गए, पर आने वाली बात ये इसके दर से पैदा होने वाला ही राज्य जी पर बैठेगा, तो ये भी क्रमशः सब कुछ भूल गए। भूलने के बाद में फिर विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उनसे मांगा, महाराज दशरथ महाराज मुझे कुछ आपको देना होगा तो सब कुछ दूंगा, आपके लिए जो क्रांति के उद्योग दूंगा निर्भीक होकर सुना चाह मैं आपके दो पुत्रों को कुछ समय के लिए चाहता हूँ। हमारा जैसे चल रहा है सिद्धाश्रम में और आपका तरफ पूरे नहीं करते मैंने उसके मारने में समर्थ हूँ किंतु हमारा जैसे बिना हमारा तपस्या होगा उसका भविष्य नष्ट हो जाएगा और इसी लोग भी वहाँ पर हैं उनको खा जाते हैं वो हाड़ और मांस की वर्षा करके उनको शांत कर इसलिए आप राम लक्ष्मण दर्शक जी ने कहा हमारे लोग के बच्चे अभी ये क्या कर सकते हैं मैं खुद चलूंगा चतुरंगी सेना के साथ और वहाँ पर उन राक्षसों को मार दूंगा तो ये आपके द्वारा संभव नहीं है। राम लक्ष्मण को साधारण मत समझिए ये नारायण के जैसे गुण और यार बड़े समर्थ हैं इनको कुछ पर प्राप्त है या क्या ये सब करते हैं महाराज दशरथ जी सुन नहीं गए विष्णुमित्र जी आए वशिष्ठ जी इनको समझा इसमें आपका और सबका कल्याण है इन दोनों का भी कल्याण है मैं देख रहा हूँ इसे आपको चिंता मन से लगता है इनको लेकर के गए और इसी में राम को उन्होंने धनुशास्त्र के कुछ वाण और विद्याएं दी जब वहाँ सिद्धार्थ में पहुंचे उस समय में सातवां राक्षसी तार के समान लंबी चिराग आकार वाली राक्षसी और उसके दो पुत्र मालिक और सुबाहु ये सिद्धार्थ के रावण की छावनी के लिए कर्म करता थे ये लोग ऋषियों को खा जाते उनके जब के विध्वंस कर देते इसलिए राम ने कहा आप लोग जब आरम्भ करें और पहले तो रास्ते में ही ताका मिली और उनको मारना चाहा उन्होंने तब भी धनुष पर बाण चढ़ाए और उसको वो तो साथ ही साथ में मर गए और मालिक का सुबह फिर आए जब जब विध्वंस करने के लिए सुबह को तो वहां पर मार डाला और मालिक को बाण मारा तो वो लंका पे जाकर समुद्र गिर गया उसको याद की इस तरह से ये चरित्र को भी देखा सुनते हैं रावण जी किसी समय अयोध्या में सरयू नदी के किनारे राम अपने भाइयों के साथ में वो क्रीड़ा कर रहे हैं और उस समय में रावण जैसे दिग्विजय के लिए निकला था वो कैसे अयोध्या पहुंच गया और मगर का धारण करके राम को निगल जाना चाह राम को राम तो राम ने पैर के ठोकर से ऐसा मारा कि वो कहाँ जा सके तो ऐसी भी कथाएं आती है। इसके बाद में उनका वध करके महाराज विश्वामित्र जी ने कहा महाराज जनक का एक निमंत्रण पत्र आया है उनकी कन्या जो भूमि से निकली है उसका स्वंतर है और विश्व में सुंदरी है मैं चाहता हूँ कि जब निमंत्रण आया है तो तुम मेरे साथ में करो स्वर्ग को देखेंगे कैसा स्वर्ग होता है वहाँ देश देश के समस्त राजकुमार लोग राजा लोग आएंगे और उसमें एक धनुष है जो दशिकी के हाड़ का जो बना हुआ वज्र का उसी का से और एक बना था उसी का धनुष है वो कितना लंबा चौड़ा है ये 10 सहस्त्र लोग भी मिलकर के उसको उठा लिए और पिताजी ने एक दिन के लिए मैं उसको हटा दिया और रोज उसकी पूजा कर तो देख करके महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की जो धनुष को तोड़ेगा इसको बाण चढ़ा देगा उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह तो उस अंतर को देखना है तो तुम लोग भी चलो तो वो लोग भी तैयार हो गए रास्ते में जाते जाते एक पत्थर की शिला पड़ी बड़ा विज्ञान पर बड़ी सुरंग किंतु कोई नहीं एक पत्थर पड़ा था रामचंद्र जी ने पूछा बोले ये राम विज्ञान बन बड़ा सुंदर पेड़ पौधे सब अच्छे हैं किंतु उससे कोई रास्ता नहीं क्या कर तो ये गौतम ऋषि का आश्रम है, वो वहाँ पर तपस्या करते और उनकी पति सुंदरी केसरी थी क्या ना, उसने कुछ इंद्र और चंद्र जान करके भी, कुछ समझ करके भी मैंने कुछ क्या किया, अस्तित्व को नष्ट किया। इसे उनको जान करके उन्होंने गौतम ने उनको और उनको भी अभिशापित, तुमने जान करके समझ करके भी तुमने उनको रोका नहीं, जाओ पाषाण में जाओ। फिर रोने लगी, अच्छा ठीक है, भगवान राम का अवतार होगा, वो अपने घर को स्पर्श करेंगे, हो जाएगा, तो शुद्ध होकर के हमारे पास में। इस तरह से इस चीज को भी देखा, और जिस प्रकार से राम ने अपने पैर से स्पर्श किया था, कि साथ में परम सुंदरी नारी बन गई और राम को चारों तरफ से प्रणाम किया और फिर अपने पति के पास गए। ये प्रश्न, फिर वो जनकपुर में गए। So, मदर कुंती जो कुंती वे
और रामचंद्र ने धर्म को छोड़ा और सीता जी के साथ में शादी की।